ओम
शांति।
आज की अव्यक्त वाणी तेईस सात 2017 पर्सनली चलाई गई। अच्छा है, बाबा तो जानते हैं ना, आप भी जानते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो बाबा जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, आप भी जानते हैं। बाबा का ये संदेश सभी तक पहुंचाना है। सभी तक माने कहां तक? है पहली बार ब्राह्मणों की दुनिया रची, ओम मंडली नाम पड़ा, पसंद नहीं आई, डिसमिस कर दी। दूसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया रची, तो ब्राह्मणों के संगठन का नाम रखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा, वो नामधारी भी 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया से फिर क्या हुआ? जैसे और धर्म पिताएं आए दुनिया में, तब तक उनके धर्म संगठन की उन्नति होती रही। वो धर्म पिताएं चले गए, उनके फॉलोअर्स ने कि की दुर्गति कर दी। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरी रची गई ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन की शुरुआत हो गई। तुरंत उसी साल अपने अपने जौन स्थापन कर लिए देहधारी धर्म गुरुओं ने, जौनल इंचार्ज बन के बैठ गए। जो ब्राह्मणों का संगठन मम्मा बाबा के समय एक केंद्र माउंट आबू से संचालित होता था, वो डिवाइड हो गया। जैसे पहली बार संगठन का पूरा विघटन होने में सन 42-45 से लेकर जो दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हीरो समालोप हो गई। बाबा ने बताए भी दिया था, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। दो दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। तो 42-45 से लेकर 47 तक पूरा ही पहला संगठन धराशायी हो गया। ऐसी दूसरी बार रचा गया ब्राह्मणों का संगठन 18 जनवरी 1969 से विघटन होते होते 1976 तक पूरा ही विघटित हो गया, जिसका इशारा भी मुरली में दे दिया था 10 साल पहले 1966 में। दस साल में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। तो 1976 में पुराने ब्राह्मण के दुनिया का विनाश हुआ। और नई ब्राह्मणों की दुनिया जिसे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया कहें, आरंभ हो गई, जिसके द्वारा आरंभ हो गई उसके द्वारा
ब्राह्मणों की नई दुनिया एडवांस पार्टी का आरंभ हुआ। और जैसे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा द्वारा तीन बार दुनिया रची गई, तीनों बार पसंद नहीं आई, ध्वस्त कर दी। ये तीसरा एडवांस पार्टी का संगठन उठा, उन अजीज बच्चों के सामने ही बोल दिया तुम बच्चे कहकर। चालीस से पचास वर्ष के अंदर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया और पहली ब्राह्मणों की दुनिया दोनों के संगठन का आरंभ और अंत 40 वर्ष के अंदर हुआ। पहला 10 वर्ष में 36 37 से 47, और दूसरा 47 से लेकर 76 77, 77 को संपूर्णता वर्ष का, जिसका 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। जिस बाप के द्वारा ब्राह्मणों की वही बीज रूप दुनिया का आरंभ हुआ, जो सन 1936-37 में हुआ था। यहाँ भी 40 वर्ष का समय दिया हुआ है, 76-77 से लेकर 2017-2018। क्योंकि 40 से 50 वर्ष बोला, इसलिए 10 वर्ष और, पूरी राजधानी स्थापन होने में परंतु राजा की राजधानी का फाउंडेशन तो एक के द्वारा ही पड़ता है, और ये तो दुनिया की सबसे सशक्त अव्वल नंबर की राजधानी स्थापन होने जा रही है। परंतु जिसे एक सत्य का सत्संग कहा जाता है, वो सत्य तो एक ही होता है, जिसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। जो दुनिया में सच्चा पातशाह कहा जाता है, मुसलमान लोग तारीफ करते हैं उस धर्म की, अल्लाह बल्दीन। अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो साबित हो जाता है कि एक के द्वारा ही राजधानी का फाउंडेशन डालने का अभियान शुरू होता है। और जो राजा की धारणा शक्ति रूपी राजधानी तैयार होने जा रही है, उसका रूप तो छोटा ही होगा। जैसे बीज छोटा होता है, परंतु राजधानी में तो सब तरह के चाहिए ना। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, राज परिवार के भांति भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए। तो संपन्न राजधानी कही जाती है। जब है ही सच्चा पातशाह, जिसका जन्म भी बताई दिया सन 76 में, सतहत्तर में संपूर्णता वर्ष, तो मन बुद्धि के अंदर विश्वास और पक्का निश्चय बैठने की बात है। दुनिया में भी कोई परिवार बनता है तो एक बीज रूप बाप से बनता है। तो मिट्टी मार्ग का बीज है तो द्विदल होते हैं। दोनों दलों का कनेक्शन एक बिंदु से होता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जैसे 76 में 28 का बोर्ड लगा, जिसका एम ऑब्जेक्ट दिया था नरसे नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है, बनेंगे तो नंबर वार। लेकिन अव्वल नंबर कोई तो होता है, जिसको आगे रखा जाता है। जो अव्वल नंबर है उसको कहा जाता है अलफ, खड़ा रहने वाला पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ करते करते नर से डायरेक्ट नारायण नहीं मन पाता उसी जीवन में, मन पुरुषार्थ जीवन में पड़ जाता है, गिर जाता है। तो उसको बताया बे, उर्दू का पहला अक्षर अलफ खड़ा हुआ डंडा होता है, दूसरा अक्षर बे पड़ा हुआ डंडा होता है। तो नई दुनिया की राजधानी का फाउंडेशन जिस एक के द्वारा लगाया जाता है, उसी के लिए गीता में बोला है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है, सच्चा होता है, उसका इस दुनिया में अभाव नहीं है, कभी खत्म नहीं होता। वो आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी है, जो शास्त्र में भी मानी गई है। एक ही व्यक्तित्व है 33 करोड़ देवताओं के बीच, जिसे आदि देव कहा जाता है। जिसके माता पिता का नाम कोई नहीं जानता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, मना पार्टी की मृत्यु नहीं होती, इस संसार चक्र में आदि से अंत तक पार्ट बजाता है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता। लेकिन महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माओं को तो अपना अपना शरीर छोड़कर आत्मलोक में जाना लाजमी है। तो बताया ब्रह्मवाक्य में जिस ब्रह्मा का वाक्य ही अटल है, वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा अटल नहीं है, अखंड नहीं है। लेकिन ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है, वो वाक्य अटल हैं। उसी वाक्य में बोला जिसे हम मुरली कहते हैं, मुरली वाक्य, कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, शिव बाप भी नहीं। क्योंकि शिव बाप बिंदी का ही नाम है, जिसे हम आत्मा निराकार बिंदी, हम निराकार बिंदी, आत्माओं का बाप भी बिंदी निराकार, उसको साकार शरीर होता ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ बाप है। हम बिंदु बिंदु आत्मा रूपी भाई भाइयों का, दूसरा कोई संबंध नहीं। जिस पराये तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए पराया भी नहीं कह सकते। जिसमें अपनत्व पैदा होता है, उसी पर आशिक हुआ जाता है। और परिवार बनाने के लिए हर पिता आशिक रूप में कोई न कोई माता को अपनाता है, इसलिए शिव बाप भी कहते हैं। ब्रह्मा मुख से मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, और ब्रह्मा एक नहीं होता है, अनेक नामधारियों के नाम ब्रह्मा, चित्र भी मिलते हैं, मूर्तियां भी मिलती हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, परंतु दुनिया में उनकी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं होते, कोई याद नहीं करता। जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जो ब्रह्मा जो अम्मा परे ते परे है। जिससे परे कोई अम्मा नहीं, और वो अम्मा भी जैसे माताओं की आदत होती है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्यों? क्योंकि माताएं सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास कर लेती हैं। नहीं तो बाबा ने बोला है, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोला है, तुम बच्चों को एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, शूटिंग पीरियड में विविचारी ज्ञान हो जाएगा, तो 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी है वो आत्माएं विविचारी ज्ञान धारण कर लेंगी, जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है कि भारत जो मातृ देश कहा जाता है, जिस माता की गोद से सारी दुनिया जन्म लेती है, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद, वो परम ब्रह्म वो भी अब्बल ब्रह्मा होने के नाते भले जहां जन्म लेता है उसी जीवन में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन माता में एक बहुत बड़ी कमी होती है, क्या? मोह की भारी कमी होती है। जो बोला माताओं का अगर मोह पर विजय हो जाए तो समझो पास हो गई, लेकिन नाम ही है भारत माता, काम ही है उनका कि ये भारत में स्त्री रूप में जन्म लेने वाली माताएं और उनके प्रभाव में आने वाले बच्चे 2500 वर्ष की हिस्ट्री में टाइम टू टाइम जो जो धर्म पिताएं आते गए उनके बरगलावे में आ गई, कन्वर्ट हो गई, उन देहधारी गुरुओं को अपना सब कुछ मान लिया, कोई दूसरे धर्म की आत्माएं जो डायरेक्ट धर्म पिता के पीछे पीछे उतरती हैं, वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं छूती, नहीं पढ़ती। ये भारत देश ही है, भारतवर्ष के ये भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म पिता को भूल जाते, धर्म ग्रंथ को भूल जाते, अपने धर्म के मर्म को भूल जाते। जो गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयाव, यही कारण है कि कलयुग के आखिरी जन्मों में, आखिरी शतक में पूरे विधर्मियों के विदेशियों के अधीन हो जाते हैं। अहिंसा से छूटते भी हैं तो आधीनता के इतने आदि हो जाते हैं कि वो ही विदेशी शिक्षा अपनाते हैं। जो विदेशी दे गए वो ही पहनावा अपनाने लगते, वो ही खान पान, वो ही रहन सहन, अपना सब कुछ भूल जाते। जो विदेशियों ने देन दिए हमारी सभ्यता देखो कितनी ऊंची है। हमारी बताई हुई पढ़ाई पढ़ो, पढ़ करके नौकर बनो, माने दास दासी बनो, और ये बहुत ऊंची बात है। देखा जाए तो आज भारत के नौजवान जो जहीन माने जाते हैं और उनके माँ बाप भी उन बच्चों को भारत की सेवा करने के लिए नहीं उकसाते, विदेश में नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। और साबित करते हैं कि भारतीय सर्वोच्च धर्म ग्रंथ जिसमें लिखा है स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयाव, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा के धर्म में रहते हुए संघर्ष करते हुए शरीर से मर जाना भी अच्छा है, जो महाराष्ट्र में खास शिवाजी का नारा था देयं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, कौन सा कार्य, जो सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का कार्य है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राज्य की स्थापना, जो कभी कोई के अधीन न हो, ऐसी स्थापना करनी है। लेकिन ऐसा लक्ष्य लेने वाले पांच पांडव संसार रूपी जंगल में लोप हो गए, बहुत प्रयास करने पर कलयुग के अंत में अगर कहीं मिलते भी हैं, जो शास्त्रों में गायन है कि पांडवों ने लंबे समय तक वनवास लिया, और वो वनवास का समय कहाँ बिताया है, कांपिल्य नगर में, जो कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के बड़े प्रणेता माने गए हैं, जिस सांख्य का अर्थ है सह आख्या, अर्थात विस्तृत व्याख्या के साथ जो बात समझाई जाए उसका नाम है सांख्य। और गीता में कहा है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडित, सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है, जो सांख्य है वही योग है, इसलिए भारतीय परंपरा में गांव-गांव में शहर-शहर में देश में विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें सांख्य अर्थात कोई बात की गहराई तक जाना। अच्छे से समझना तो दूसरों को भी समझाई जा सके। कोई कितना भी प्रश्नोत्तर करे कितने भी रावण के सर निकलते रहे राम के बाण मार मार करके सभी सरों का खंडन करता रहे अंत तक खंडन करता रहे जब तक कि 16,000 नसेनानियां जिनमें आधी शुद्ध खून बहाने वाले और आधी अशुद्ध खून काला खून बहाने वाली नाड़ियां होती हैं, वो नाड़ियों का मेल नाभि में हो जाए और वो नाभि कुंड में ऐसा बाण लगे जो रावण का क्रियाकर्म हो जाए। सोलह हजार नशे नाड़ियां कौन है बेहद ज्ञान की भाषा में, आधी रुद्रमाला आधी विजयमाला। विजयमाला है शुद्ध खून बहाने वाली और रुद्रमाला है अशुद्ध खून बहाने वाली काला खून बहाने वाली। खून माने संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति का ओरिजिन तो एक ही आत्मा से होता है या दो आत्माओं से होता है? संकल्प शक्ति शुद्ध रूप में कहें 100% तो उसका ओरिजिन करने वाली एक ही आत्मा त्रिकालदर्शी शिव। जो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार है जिससे निराकारी ज्ञान का अखूट भंडार का वर्षा मिलता है। लेकिन निराकारी ज्ञान जिसे हम थ्योरी कहते हैं उस थ्योरी को प्रैक्टिकल जीवन में जो सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई बड़ा बच्चा भी होगा जो 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता कहा जाता है। सभी धर्म पिताएं उसे मानते तो हैं, एडम आदम आदिदेव आदिनाथ, लेकिन जानते नहीं हैं। उसकी जीवन कहानी को सब भूले हुए हैं। हम ही अपनी जीवन कहानी जानते हैं, उनके फॉलोअर्स जानते हैं, लेकिन जो अनादि व्यक्तित्व है उसकी जीवन कहानी को सब भूले हुए हैं। जो ब्रह्म वाक्यों में बार बार बताई गई कि एक ही शिव बाबा है, जिसकी जीवन कहानी कैसी है, है कोई तुल्य है? एक ही जीवन कहानी है, जो बर्थ पाउंड जिसे कहें, बर्थ पाउंड जन्म भी कहें, हीरे जैसा जन्म, परंतु वो हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में पत्थर के रूप में जड़ा हुआ था, वो पत्थर बुद्धि शिव नहीं है। कोई मनुष्य आत्मा संघ के रंग में आकर बनती है, जो मूल रूप में माता का पार्ट बजाती है, भारत माता। जिसके दो रूप हैं, एक निराकारी ज्योति बिंदु मनन चिंतन मंथन करने वाला, एक साकार चोला पांच तत्वों का संघात, प्रकृति रूपिणी माता, इसके दो रूप हैं, एक सात्विक रूप लक्ष्मी के रूप में, दूसरा तामसी रूप भी बनता है। जो सिर्फ भारत माता नहीं कहा जाता, जगत माता कही जाती है, जगदम्बा, दोनों का मेल महालक्ष्मी कहा जाता है। परंतु दोनों ही साकार रूप में स्वयं मनन चिंतन मंथन करने वाली चैतन्य शक्तियां नहीं है, इसलिए पानी की गंगाएं हैं। पानी का मंथन करने से कोई सार नहीं निकलता है, वो पानी की गंगा भी जो पंच तत्वों का संघात है, जिसको गीता में दो रूपों में कहा है, एक जड़ प्रकृति, एक परा प्रकृति, तो जड़त्वमयी प्रकृति वो जो जगत पिता के संसर्ग संपर्क संबंध में लंबे समय तक रहने के बावजूद भी बाप को भूल जाती है और चैतन्य प्रकृति वो जो लंबे समय तक शारीरिक रूप से इंद्रियों के मेल से बाप के साथ नहीं भी रह पाती तो भी भूलती भूलती नहीं। मन बुद्धि से और पंच तत्वों के शरीर से भी कभी किसी के प्रभाव में नहीं आती। कभी किसी की प्रभावित होने वाली प्रजा नहीं बनती। परंतु नाम तो है ही प्रकृति रूपी माता, प्रमाणे प्रतिष्ठ रूपेण कृति माने रचना, चाहे लक्ष्मी हो वो भी रचना है, चाहे जगदम्बा हो वो भी रचना है। परंतु दोनों का जो संपन्न रूप है उसका मेल होता है तो महालक्ष्मी कही जाती है। जिस महालक्ष्मी का पूजन कौन से स्पेशल दिन होता है, है दीपावली पर, अवली माने कपाल, जब ज्ञान की रोशनी देने वाली दीपकों की अवली तैयार हो जाती है, माला तैयार हो जाती है। तब पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। जिस राजधानी की स्थापना के लिए तुम बच्चों को जो डायरेक्ट बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, सन्मुख का भी अर्थ दो प्रकार से है, एक बाहर से सन्मुख देखने में आते हैं अंत तक की संपन्न स्टेज में, और अंदर से भी सन्मुख हैं और ऐसे भी हैं और बहुत हैं जो बाहर से तो सन्मुख देखने में आते हैं सबको, लेकिन अंदर से भयंकर संकल्प चलते हैं, विरोधी संकल्प चलते हैं बाप के प्रति। तो अंत तक की संपन्न राजधानी में जुड़ नहीं पाते। ऐसे राजा की धारणा शक्ति रूपी राजधानी जब तैयार होती है तो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं से सुनने लग पड़ते हैं, भारत में जन्म लेते हैं, भले सतयुग त्रेता भले पूरे 84 जन्म नहीं लेते, बाद में आते हैं। लेकिन विधर्मियों और विदेशियों में कन्वर्ट होकर सारे संसार में फैल जाते हैं। भारतीयों का संगठन थोड़ा रह जाता और बाद में आने वाले विदेशियों विधर्मियों का संगठन ढेर का ढेर हो जाता। पता ही नहीं चलता कौन स्वदेशी है स्वधर्मी है, कौन विदेशी है विधर्मी है। कारण कारण कि जो साकार निराकार का मेल सोमनाथ मंदिर में जिसकी यादगार दिखाई गई, शिवलिंग, वो स्वयं ही सारे जगत से प्रभावित हो जाता है। यहां तक कि वो रथ इतना प्रभावित हो जाता जो सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया गया, पेट की रोटी, तन के कपड़ों, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी विदेशियों के अधीन हो जाता। मूल रूप में जानेंगे तो जगत पिता है, 500-700 करोड़ का पिता। जैसे परिवार में बच्चे कहाँ से जन्म लेते हैं, हैं? अरे हैं? माँ से जन्म लेते हैं। माँ में कहाँ से आते हैं, बाप से आते हैं ना। जो बाप साकार और निराकार का मेल होता है, निराकार आत्मा और साकार शरीर, ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का जो एक बीज है, जो शिव के मंदिरों में यादगार रूप में दिखाया जाता है, जिसका गहरा अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते, न भारतवासी जानते हैं, न विदेशी जानते हैं, न विधर्मी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। और वो बाप सिर्फ साकार होता है या निराकार? सिर्फ साकार होता है, संपन्न रूप साकार और संपन्न रूप निराकार। संपन्न रूप निराकार का मतलब है सत्यधाम वासी, जो बाप शिव का विरुद्ध है कि मैं इस पतित सृष्टि में पतित तन में आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। जो अब्बल नंबर बाप समान बनता है, बीज रूप स्टेज में निरंतर का अभ्यासी, समय का कोई अंतर न पड़े, ऐसा बीज रूप का अभ्यासी, उसकी यादगार है हीरा, जो आखरीन पत्थर बुद्धि बन जाता है।
किस बात में पत्थर बुद्धि बन जाता है?
हा? कोई प्रूफ हो, प्रमाण होना चाहिए या नहीं? जो शिव बाप कहते हैं, तुम बच्चों को प्रूफ और प्रमाण के बगैर कोई बात माननी ही नहीं चाहिए। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानते ही नहीं।
वो क्या प्रूफ है
कि मनुष्य शक्ति के बीज रूप आत्मा, सार रूप आत्मा, वो भी पत्थर बुद्धि बन जाती है? पत्थर समान बन जाती है, जैसे मुरली में बोला ब्रह्म वाक्य, साकार और निराकार के मेल में से शिव को हटा दो तो क्या रह जाएगा? है शब रह जाएगा, जीवंत या निर्जीव? है निर्जीव। पत्थर कैसा होता है? जीवंत होता है या निर्जीव होता है? है निर्जीव। उस निर्जीव जिसे रथ कहा जाता है, उसका आधार लेता है शिव बाप। जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी बाप रथ का आधार लेता है या चैतन्य आत्मा का आधार लेता है? हैं? रथ का आधार लेता है। रथ को कंट्रोल करता है युक्ति से, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है युक्ति से, परंतु आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है या बंधन में रखता है? हैं? बंधन में रखता है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा की स्वयं की इच्छा है तो बात माने, इच्छा नहीं है तो न माने। सभी आत्मा रूपी बच्चों के लिए एक नियम अपनाता है या अलग अलग नियम अपनाता है? एक ही नियम। तो बच्चों में बड़ा कार्य करके दिखाने वाला जो बाप का बड़ा बच्चा है, जिसमें बाप की प्रॉपर्टी क्या बताई? सत्य, ज्ञान। सत्य का ज्ञान है या असत्य का ज्ञान? सत्य का ज्ञान, जिसमें सत्य भाव 100% आ जाता है। दुनिया में कोई भी बाप के बड़े बच्चे में जो लौकिक बाप होते हैं उनके अंदर जो सत्य की शक्ति होती है जो माता के द्वारा धारण कराई जाती है धारण करने वाली माता अगर सच्ची है धरणी सच्ची है शुद्ध है तो उसका प्रभाव भारत में ही देखा जाता है सती के रूप में। जिन्हें शिव शक्ति कहा जाता है जिन्हें शिव शक्तियों के द्वारा नई दुनिया की राजधानी की स्थापना होती है स्वर्ग के गेट खोले जाते हैं। ये शक्ति कहाँ से आई है? जो भारत की कन्याएं माता हैं, जो विदेशियों के धर्मियों से प्रभावित होती रही जन्म जन्मांतर होती रही 63 जन्म लगातार, उनमें ये शक्ति कहाँ से आ गई है? कहाँ से आ गई और कब आ गई? कब से आ गई? शिव बाबा से आ गई, सन 36 से, सन 47 से, सन 76-77 से आ गई। अरे आ गई या नहीं आ गई? आ गई, आ रही है। अच्छा आह्वान हो रहा है, विजय माला का आवाहन हो रहा है, माला मानी संगठन। उस संगठन का कोई मुखिया भी होता है जिसे शहद की रानी कहते हैं। शहद की रानी को नियंत्रित कर लिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? 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 सारी शहद की मक्खियों का झुंड रानी के पीछे आ जाता है, देर नहीं लगती है। जैसे रावण की नाभि में जहां 16,000 नाड़ियां इकट्ठी होती हैं, एक बाण लगा और रावण दरासाई हो गया। जो बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो दक्ष से राजधानी स्थापन हो जाती है। जो बाप का कहना है सुप्रीम सोल बाप का कि मैं आता हूं तो दक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। है? कि 80 साल लगते हैं? है? नहीं, अखंड पूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं कि अधूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं? है? अखंड संगठन, ऐसा संगठन तुम ब्राह्मणों का बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसी सशक्त दुनिया की राजधानी, भारत में स्थापन होती है। और सशक्त राजधानी स्थापन हो गई तो क्या रिजल्ट होगा? दुनिया के जो देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा स्थापन की हुई धर्म की मान्यताओं वाली यूनिटी है वो ध्वस्त होने में देर लगेगी 80 साल लगेंगे या थोड़े में ही नष्ट हो जाएगी? जो आदि आदि में भी 10 साल लगे थे, बीज रूप आत्माओं का संगठन तैयार हुआ था, अंत में भी 10 साल ही है, परंतु वो 10 साल बाप के जो सिकील दे बच्चे हैं उनके लिए हैं, या विदेशियों भी धर्मियों के लिए हैं? विदेशियों भी धर्मियों के लिए आखिरी 10 साल हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप और उसके बीज रूप श्रेष्ठ बच्चे हैं उनके लिए 100 साल नहीं है, ऐसे नहीं समझना है कि अभी 20 साल पड़े हैं सन 17-18 में। वही बात इस अव्यक्त वाणी में बताई है कि अभी अंत समय है, ये बाप का संदेश 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है कि सारी मनुष्य सृष्टि का जो एक बाप है वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो चुका है। जिस साकार बाप से साकार मनुष्य सृष्टि का साकार वर्षा मिलता है या निराकार वर्षा मिलता है? स्वर्ग साकार होगा या निराकार होगा? धनवान बाप धन का वर्षा देता है, जमींदार बाप जमीन का वर्षा देता है, जो स्वस्थिति में स्थित होने वाला होगा सदाकाल साकार या निराकार? पहले स्वयं से स्थिति में स्थित हो तब बच्चों को वर्षा देगा। जो बच्चे साकार में हैं साकार से साकार वर्षा मिलता है, निराकार से निराकार का अखंड वर्षा मिलता है। तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की संपन्न यादगार है शिवलिंग, जिसमें बड़ा रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है, जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को ही याद करो। 80 साल हो गए निराकार की याद में एक्सपर्ट बने या साकार की याद आती है ज्यादा? है साकार की याद ज्यादा स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि 63 जन्म साकार का संग किया है तो साकार की याद में एक्सपर्ट बने। जब संसार के बीज रूप बच्चे उनकी ये हालत है जिस बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है, जड़ों से भी ज्यादा, तने से भी ज्यादा, टहनियों से भी ज्यादा, फलों से भी ज्यादा, फूलों से भी ज्यादा, बीज में ही तो ताकत होती है। तो बीज रूप आत्माओं का जब ये हाल है तो जो 500-700 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो महामृत्यु के समय अंत समय में किसकी याद करेंगे? निराकार को याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाएंगी या साकार को याद करेंगी? इसलिए तुलसीदास ने बोला रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय अरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, जो साकार है वो ही निराकार बनता है। साकार शरीर होता है, तन होता है, रथ होता है, भगवान तो निराकार है। जो निराकार है, सुप्रीम सोल है, उसको क्या चाहिए?
अरे
नई सृष्टि रचने के लिए उसे क्या चाहिए? कुछ चाहिए या निराकारी रूप में फुदुक फुदुक करके सृष्टि उत्पन्न कर देगा? साकार चाहिए ना, तो उसे रथ चाहिए या निराकार आत्मा चाहिए? तो जो टोटल रथ बन चुका, एकदम जड़ बन चुका, नाम दे दिया जड़ भरत, उस जड़त्व रूप का आधार लेता है। कौन लेता है? परम पुरुष। पुरुष माने आत्मा। कैसा पुरुष? परम, जिससे परे ते परे कोई है ही नहीं। उसको नई सृष्टि रचने के लिए आधार चाहिए, मासूका चाहिए, वो आशिक बनता है। आशिक किसके पीछे दौड़ता है? मासू के पीछे दौड़ता है। जिसके पीछे दौड़ता है उसको एड़ी चोटी की ताकत देने के लिए तैयार रहता है, सारी शक्तियां अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, या कुछ बचा के रखता है? सब कुछ अर्पण करता है। पहली रचना है कृति, कृति क्या है? प्र माने प्रकष्ठ, कृति माने रचना। उसको कहते हैं भारत माता। जो माता है वो माता संसार की दृष्टि में मात्र प्रधान है। भारत देश क्या है? मात्र प्रधान देश। दुनिया का और कोई देश नहीं है जो मात्र प्रधान हो। साक्षात पुरुष प्रधान। वो परम पुरुष है, माता को सारी शक्ति अर्पण करता है। माता की भुजाएं तो हैं ही सहयोगिनी रूपी, वो माता आदि रूपा है। क्योंकि वो सारी शक्तियां प्रकृतिपति से लेती है, और सदाकाल के लिए लेती है कि अल्पकाल के लिए लेती है? है सदाकाल के लिए लेती है। इसलिए भारत में परंपरा है, पितावाहन प्रस्थी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, और माता परिवार संभालती है। तो माता पिता भी है और माता माता भी है, यही परंपरा दादा लेखराज ब्रह्मा तक आई। क्या है पिता का टाइटल किसको मिला? दादा लेखराज ब्रह्मा को भी मिला। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां तमेव माता च पिता का साकार प्रैक्टिकल रूप चैतन्य रूप किसको मानती हैं? तो देखो ये परंपरा भी कहां से शुरू होती है? है ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहला ब्राह्मण कहा जाता है, कौन पहला ब्राह्मण? सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, वही पहला शूद्र, फिर वही पहला ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जब संपन्न बनता है तो ब्राह्मण देवता पूजनीय बनता है। जो पहला पहला पूजनीय बनता है उसी की यादगार शिवलिंग है। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? शंकर लिंग क्यों नहीं? बड़ा, अरे शिवलिंग क्यों कहा जाता है? जो बोला ब्रह्म वाक्य में बोल दिया मुरली में, मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं के अन्य इंद्रियों की भी पूजा होती है, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, मेरे लिंग की पूजा होती। अच्छा, शिव को लिंग है, इंद्रियां हैं, तो किसके इंद्रिय की बात है? कौन इंद्रिय जीते जगत जीत बनता है? शिव। योग बल से शिव इंद्रियों को जीतता है, उसे जरूरत है? उसको तो इंद्रिय है ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में लिंग दिखाया गया जिसका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा जड़त्व की यादगार है, जो जड़त्व की यादगार प्रकृति की बीज है, परा प्रकृति भी है और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका संघात रूप जड़ प्रकृति भी है। दोनों का मेल होता है, जो महालक्ष्मी बनती है वो ही लिंग रूप है और वो माता है जो यादगार बनी हुई है। तमेव माता, मंदिर में जाते हैं शिव के हाथ जोड़कर किसके सामने कहते हैं है? शिवलिंग के सामने कहते हैं तमेव माता, तू ही मेरी माता है, क्योंकि माता और पिता के रूप में चैतन्य आत्मा जड़ तुम्हें शक्ति के रूप में माता जो प्रकृति रूपा कही जाती है सात्विक रूप भी है तामसी रूप भी है, दोनों का मेल भी है और एक ही व्यक्तित्व में वो मेल होता है जिसे परम पदधारी विष्णु कहा जाता है। विष्णु एक आत्मा का मेल, दो आत्मा का मेल, नारायण और लक्ष्मी दोनों का मेल। कैसा मेल? सात्विक मेल या 100% तामसी मेल? आज के स्त्री पुरुषों का कैसा मेल है? इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा प्रवृत्ति का रूप दिखाई देता है कोई भी धर्म में, जो वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, कर्म इंद्रियों से आपस में टकराता न हो। कोई है? कोई देखा जा सकता है ढूंढने पर है? नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना सुप्रीम सोल बाप आकर के निराकारी ज्ञान देकर करते हैं, जिस निराकारी ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल है, थ्योरी कहा जाता है उस निराकारी ज्ञान को, थ्योरी को, जो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकली धारण करके दिखाता है। वो ही शिवलिंग रूप है, जो गीता में क्या कहा गया, अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति तो है, मूर्त माने साकार या निराकार है? साकार, लेकिन अव्यक्त मूर्त माना साकार होते हुए भी नाक, आंख, कान, हाथ, पांव दिखाई नहीं देते, ऐसी मन बुद्धि की निराकारी स्टेज में टिक जाता है। निरंतर युग के संगम युग के लिए। और ऐसी निराकारी स्टेज साकारी सो निराकारी, जिसमें साकार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है। कौन कौन? पार्वती माता कहो और पुरुष कहो, जिसे भक्तों ने शंकर कह दिया। वो शंकर नहीं जो याद के पुरुषार्थ में बैठा है, वो अधूरा है या संपन्न है? वो तो अधूरा है। जब याद की संपन्न स्टेज पर पहुंचता है, तब प्रवृत्ति तैयार होती है। और वो प्रवृत्ति के दो रूप हैं, एक ज्ञानी छोरी टीकल, ज्ञान धारण करने वाला, और एक प्रैक्टिकल रूप। लेकिन उसमें थ्योरी नहीं होती है शुरुआत में। लक्ष्मी किससे ज्ञान लेती है? नारायण से ज्ञान लेती है। और नारायण प्रैक्टिकल में, जिसे शक्ति कहा जाता है, जिसे सत्य कहा जाता है, उस सत्य को संसार में विख्यात ही नहीं कर सकता जब तक प्रवृत्ति न धारण करे। ये अंधे लंगड़े की कहानी है। लंगड़ा है, किस बात का लंगड़ा है? हाँ जी। और अंधा ज्ञान का अंधा है। दोनों का मेल होता है तो पक्का अर्धांगिनी बन जाती है। सतयुग के आदि में वो महाराजा कौन है जो पत्थर बुद्धि था? कौन सी बात में? अमृत छोड़ बिख काये को खावे, इस बात में पत्थर बुद्धि यह धारण करता है। विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है, श्रीमत को फॉलो करने वाला है पूरा। इस एक बात में पत्थर बुद्धि है, है ना? तो वो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि कैसे बने? दुनिया में जो भी सन्यासी हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर कोई भी धर्म पिताएं, प्रवृत्ति के पक्के रहे या कच्चे रहे, कभी प्रवृत्ति को जीवन में निभाए नहीं सके। और शंकर को भी दो रूपों में शास्त्रों में दिखाया गया, निवृत्ति में भी है और प्रवृत्ति में भी है। जब प्रवृत्ति है तो संपन्न है, उसको कहते हैं विष्णु रूप। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ऐसा विष्णु जिसमें नो भी शैताल विषपाई में विष का नाम निशान भी नहीं रहता। कौन सी शक्ति आकर मिल जाती है? है दुनिया के सारे काम काहे से होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं। वो पवित्रता को धारण करने वाली भारत में सती कही जाती है। जो दो नंबर की सती मानी जाती है वृंदा तुलसी का अवतार, सेकंड क्वालिटी, उसमें भी इतनी शक्ति है कि जब तक राक्षस जालंधर के पक्ष में रही तब तक उसको भगवान कहा जाने वाला, माना जाने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पूरा परिवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जो वही सती उसके कंट्रोल से बाहर चली गई तो धराशायी हो गया। ये पवित्रता की प्रैक्टिकल शक्ति है जिसे कहा जाता है इबर प्योरिटी, हिस्सा बांट हो जाता है। थ्योरी हमारी और प्रैक्टिकल तुम्हारा, दोनों का मेल। थ्योरी आत्मा में बनती है, ज्ञान की थ्योरी जानकारी की या शरीर में बनती है? आत्मा में बनती है। और प्रैक्टिकल शरीर से होता है। तो प्रकृति रूपी जो माताएं हैं जिनको शास्त्रों में दो नाम दिए, दिति और अदिति, दोनों शक्तियां हैं। किससे शक्ति लेती रही? कश्यप, काश्य माने तेज, योग का पा माने पीने वाला, जो योग का तेज पीने वाला संसार में योगीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, योगी राज के नाम से जाना जाता है। चाहे कृष्ण नाम दें, चाहे शंकर नाम दें, चाहे ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार नाम दिया जाए, योगीश्वर एक ही होगा या तीन तीन होंगे? एक ही है। उस एक योगीश्वर, योगीश्वर से सारी जड़ जंगम सृष्टि कोई न कोई रूप में आगे पीछे योग जरूर लगाती है। पहले जंगम चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्माओं में भी कौन मुखिया है? अरे चैतन्य प्राणी है, उनमें सभी में आत्मा है, उनमें मुखिया कौन है? मुख्य जाति कौन सी है? मनुष्य जात, क्योंकि मन वाली है।
तो
प्राणियों में मनुष्य रूप का जब प्राणी रूप प्राणी जो है कहा जाता है मनुष्य जाति वो ज्ञान को पहले ग्रहण करती है और आत्माओं का बाप
क्या देने आता है
ज्ञान देने आता है। ज्ञान मनुष्य समझेगा या अन्य प्राणी समझेंगे? उनमें मन बुद्धि वैसी नहीं होती। मन तो होता ही नहीं, मनन चिंतनशील संकल्प विकल्प करने वाला वो तो जड़त्व में ही प्राणी है, आवेग आया और कर बैठे, एक सेकंड की भी देर नहीं लगाते। मनुष्य सोचता है, विचारता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य मनन चिंतन नहीं करता तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, जानवर से भी बदतर है। जो बाप कहते हैं भगवान ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। श्रीमत क्या है क्या नहीं है, देवान का आवेग आया और कर बैठे। ऐसे बंदरों को मैं किस लायक बनाता हूँ? मंदिर लायक बनाता हूँ। जिन मंदिरों में स्वयं ही वो पूज्य हैं और स्वयं ही पुजारी रूप में दिखाए जाते हैं, तो शिवलिंग जहाँ पूजा हुई द्वापर के सात्विक समय में, तो शिवलिंग वाली आत्मा कभी पूज्य भी थी सारे संसार के लिए, सारे संसार के लिए कि थोड़े बहुतों के लिए, सारे संसार की दृष्टि में पूज्य थी, क्योंकि सारे संसार ने पहचाना था बाप को। जो ब्रह्मवाक्य की मुरली में बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, फादर से कहें और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं। जो परमधाम वासी है वो धाम तुरिया धाम है, लेकिन जड़त्व में है या वो धाम चैतन्य है? जड़त्व में है। वो बाप उस जड़त्व में धाम तुरिया धाम में पूरे 5000 साल टिक कर रहता है, वो सभी चैतन्य आत्माओं का बाप है या सिर्फ मनुष्य आत्माओं का बाप है? है सभी चैतन्य आत्माओं का बाप है, लेकिन मजबूरी ये है कि जो भी और प्राणी हैं आत्माएं वो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, इसलिए ज्ञान की प्रॉपर्टी देने के लिए चैतन्य मनुष्यों के बीच आता है। चैतन्य मनुष्यों के बीच में आता है या जड़त्व बुद्धि वाले प्राणियों में आता है? कितने टाइम के लिए आना चाहिए टाइम भी बता दिया है ब्रह्मवाक्य में। कितना है? 100 साल। लेकिन 100 साल जो है वो सूर्यवंशी बच्चों के लिए या सभी धर्मवंशियों के लिए? सभी धर्मवंशियों के लिए। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे हैं, जो खास दो धर्म स्थापन करके जाता हूँ, कौन कौन? सूर्यवंश और चंद्रवंश। उनमें भी वो चंद्रवंशी जो सूर्यवंश में अपने को कन्वर्ट कर देते हैं जीवन रहते, उनको क्या कहा जाता है? कौन सी माला? विजय माला, विजय प्राप्त कराने वाली माला। इस बात से विजय, ऐसी कौन सी बात है जो विजय प्राप्त होती है? हैं? प्रैक्टिकल रूप में पवित्रता। ब्रह्मा द्वारा सुनना सुनाना, शंकर द्वारा समझना और समझाना। प्रैक्टिकल हुआ? हुआ? नहीं हुआ। रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। दुनिया में भी पढ़ाइयां होती हैं, थ्योरी में कोई पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। तो फेल या पास? फेल। परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम में जब भगवान बाप का पाठ चलता है तब से ही ये परंपराएं शुरू होती। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसे। दुनिया के सभी मनुष्य जिन परंपराओं को मैं आरंभ कर देता हूँ उन्हीं परंपराओं पर आगे पीछे चलते रहते। तो बोला कि जो संदेश है ये वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं तक तुम बच्चों को पहुंचाना है। सभी तक पहुंचाना है का मतलब क्या हुआ है? सभी तक पहुंचाना है। क्यों अभी तक क्यों नहीं बोला सभी तक पहुंचाना है? क्योंकि अभी तक जो भी ब्राह्मण बच्चे थे उनको बाप कहते रहे, बाप का परिचय दो, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं सके। बाप बार बार बोलते रहे, बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। अभी नंबरवार बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव एक ही कौन है, जिस एक के स्वरूप संस्कार में स्वभाव में माता भी है और पिता भी। नहीं तो माता अलग होती है फीमेल और पिता अलग होता है मेल। लेकिन वो शिवलिंग रूप ऐसा है जिसमें वो मेल भी है और फीमेल का भी स्वरूप है। जिसे साकार और निराकार कहा। माताएं साकार होती है या निराकार होती है? हैं? साकार होती है। देह रूपी साकार स्वरूप का भान भूलता ही नहीं। घड़ी घड़ी वो भान सवार रहता है। इसलिए कहते हैं जो पुरुष है जिसे आत्मा कहा जाता है, बीज कहा जाता है। उस बीज रूप पिता की पहली रचना कौन? माता। वो प्रकृति है, प्रकृष्ठ कृति, उसको जल देना है, आधार है। जो झाड़ के चित्र में आधार रूपा क्या दिखाई गई? अरे जड़ें दिखाई गई कि नहीं? जल देना है, किसको देना है? जड़ों को जल देना है। कि पत्तियों को, टहनियों को, फलों फूलों को जल देने से फायदा होगा? ये स्नेह का जल है, प्यार का पानी है, लेकिन गंदला पानी चढ़ाना है या स्वच्छ जल चढ़ाना है? है? स्वच्छ जल चढ़ाना। जो स्वच्छ जल है उससे सस्य रूपी वृक्ष क्या होता है? सरसब्ज होता है, गुले गुलजार होता है। कब होता है? है? आरंभ क्या है? आरंभ है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई भी धर्म रूप का पिता बीज रूप है, वो अगर जीवन में समाज के दिए हुए धक्के नहीं खाता है, जिसे कहते हैं धर्म के धक्के, तो उसका धर्म कभी भी स्थापन ही नहीं हो सकता। वो तो देहधारी धर्म पिताएं हैं, देह की स्थिति को छोड़ ही नहीं पाते, भले भगवान भी इस सृष्टि पर आ जाए तो भी देह अहंकार नहीं छोड़ पाते। और ये पिता कैसा है? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कैसा है? जो कैसा है? पूरा मुर्दा हो जाता है, लक्कड़ बुद्धि हो जाता है, जिसकी यादगार नेपाल में दिखाई जाती है। कहाँ? नई दुनिया की पालना करने वाला नई पाल, वो है अद का नेपाल, और ये है बेहद का नेपाल। इस बेहद के नेपाल में वो काठमांडू का काठ का बना हुआ मंडू को माने मेंढक, काठ के बने हुए मेंढक की तरह कार्य करता है। कब? कब? जब ज्ञान की बरसात का मौसम आता है। तीन मौसम होते हैं ना, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी का मौसम है, ठंडा दिमाग रहता है सबका, वो है सतयुग त्रेता। गर्मी का मौसम है, द्वापर और कलयुग, सबका दिमाग गर्म रहता है। और बरसात का मौसम कौन सा है? जब भगवान बाप आकर ज्ञान की बरसात करते हैं तो बरसात का मौसम हो जाता है। जिस मौसम में खास शिवलिंग की पूजा होती है, कौन से दिन? श्रावण के महीने में, जो श्रवण कुमार के नाम पर श्रावण पड़ा है,
जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में 2500 साल चलती है। उसका मुख्य दिन है सोमवार, यहाँ खास शिव की पूजा होती है। गुलाब के फूलों से सजाया जाता है, लेकिन जिस संगठन रूपी देश में सजाया जाता है वहां जो अव्वल नंबर का पुरुषार्थी काठ का मंडूक बन जाता है, कठ बुद्धि बन जाता है, जैसे कृष्ण को मुरली दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। काहे की मुरली होती है? सोने की, काठ की मुरली होती है। अरे कठ बुद्धि की बुद्धि में कुछ बैठेगा है? नहीं बैठ सकता। कौन हुआ कठ बुद्धि? जिसकी यादगार में हाथ में मुरली दिखाई जाती है काठ की। मुरली का एक भी पॉइंट गहराई तक बैठता ही नहीं। जो मुरली का मुख्य उद्देश्य है बाप की पहचान, जिस बाप से साकार में दुख दर्दों से मुक्ति जीवन रहते और जीवन मुक्ति मिले, जीवन में रहते रहते मुक्ति मिले, तो काठ की मुरली को धारण करने का भक्ति मार्ग में जिसका बड़ा यादगार चलता है मुरलीधर है, वो मुरली का मर्म ही नहीं जानता, तो स्वयं भी कठबुद्धि है और बाप को नहीं पहचानता, इसलिए कठबुद्धि कहा जाता है। और उसका बाप भी कैसा हा? पहला पहला रूप माता या पिता, जब शिव बाप आते हैं माता परम ब्रह्म। और माताएं कैसी बुद्धि है? कठ बुद्धि। कठ बुद्धि हो तो कंट्रोल्ड होंगी या कंट्रोल करेंगी है? कंट्रोल्ड हो जाती है। दुनिया की सारी माताओं का एक ही हाल, अगर कोई इंदिरा गांधी जैसी निकल भी पड़े तो क्या होता है? गोली से मार दिया जाता है। तो जो नई दुनिया की पालना करने वाला, फाउंडेशन डालने वाला है बेहद में, वो भी क्या बन जाता है? अरे नेपाल में यादगार बनी हुई है काठमांडू का मंदिर। काठ माने लकड़ी, मंडूक माने मेढक। ऐसा लकड़ी के मेढक का यंत्र बन जाता है जो श्रावण के महीने में जब सुप्रीम सोल भगवान बाप आते हैं
तो कितना ट्रा 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 करता रहता है। और जो मूल बात है, क्या मूल बात है?
नहीं, बाप की पहचान नहीं, बाप की पहचान नहीं है। वो तो स्वयं ही बाप है, वर्षा देने वाला बाप तो वो स्वयं ही है। प्रैक्टिकल में जो साकार वर्षा है, साकारी स्वर का, उसका रचयिता साकार होता है या निराकार? वो तो स्वयं ही है। लेकिन काठ का मंडू, काठ का मेढक यादगार नेपाल में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बरसात के पीरियड में, पुरुषोत्तम संगम युग में, उसका पुरुषार्थी रूप मेढक की तरह ट्रां ट्रां करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देता। देता है? नहीं देता। वो रिजल्ट भी तब निकलता है जब प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनता है, और प्रवृत्ति मार्ग में ही सच्चा योग होता है। योग माने लगाव, अटैचमेंट। निराकार या साकार, या साकार निराकार दोनों के मिल से स्वयं भी क्या है? स्वयं भी साकार निराकार का मेल। तो जिससे अटैचमेंट हो, लगाव हो, लगन हो, वो भी कैसा होना चाहिए? साकार निराकार का मेल। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या? तो माता में पिता मिलकर एक हो जाता है, पिता में माता मिलकर एक हो जाती है। तो मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं, उसका पक्का यादगार है शिवलिंग। वो है बाप त्रिमूर्ति में, ऊंचे से ऊंचा बाप है या नीचे वाला बाप है? त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जो चित्र दिए हुए हैं वो यथार्थ हैं या अर्थ सहित है? अर्थ सहित है, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करना बोला या नहीं बोला? बोला। तो ये तीन आत्माएं हैं। जब शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं, तो तीन के साथ आता हूं। जो ये चित्र दिया अयथार्थ, उसकी बात नहीं है। वो आदि रूप जो तीन थे मौजूद, वो तीन मूर्तियां, वो भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। शिव एक या तीन मूर्तियां हैं? ब्रह्मा को शिव कहें, विष्णु को शिव कहें? अरे विष्णु तो देवताओं का रक्षक है, राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों का रक्षक होता ही नहीं है। और शिव है कल्याणकारी, शिव माने वो सबका कल्याणकारी है कि कोई का कल्याणकारी है कोई का नहीं? तो न ब्रह्मा का चित्र, न विष्णु का चित्र, और शंकर तो याद में बैठा ही हुआ है। पुरुषार्थी है या संपन्न है? तो वो तो अधूरा है, उसको भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कह सकते। जिसकी यादगार है त्रिमूर्ति हाउस दिल्ली में बना हुआ है, त्रिमूर्ति हाउस एक, दो या तीन? एक त्रिमूर्ति।
Murti Road. एक ही रास्ता सच्चा या दो तीन चार आठ सच्चे, एक ही रास्ता सच्चा। तो वो एक कौन, जिस एक बाप का परिचय ब्रह्म वाक्य में मुरली में दिया गया, और ये भी बोला कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, निराकार बाप का परिचय भी कोई नहीं दे सकता निराकारी बाप के सिवाय, और निराकार सो साकार बाप का परिचय भी दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के। तो उसको कहा गया बाबा, निराकार और साकार का मेल, ये बाबा का लास्ट संदेश है, अव्यक्तवाणी के रूप में संदेश जो सभी तक पहुंचाना है। सभी माने 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है। कौन सा संदेश पहुंचाना है? बाबा समय का इशारा देने के लिए आए हैं। समय का इशारा, क्योंकि बाबा जानते हैं कि थोड़े से समय के बाद साइंस के सब साधन समाप्त होने वाले हैं। क्या कहा? इसलिए जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर, कहीं में रहकर यज्ञ में रहकर, कौन सा यज्ञ है, क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं सत्य रूपी रंगमंच पर। यज्ञ माने ईश्वरीय सेवा का यज्ञ। ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ, उसका नाम शिव यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा यज्ञ नहीं है, विष्णु यज्ञ नहीं है, क्या नाम है? रुद्र माने क्या? रौद्र रूप धारण करे। शिव रौद्र रूप धारण करता है, है? नहीं करता, वो तो प्यार का सागर है या रौद्र रूप धारण करता है? प्यार का सागर है। तो जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं, किससे? बाप से या बाबा से? बाप को तो 80 साल हो गए, कौन से बाप को? शिव बाप को। कभी किसी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती की कि स्वतंत्र छोड़ा, बच्चों ने माँ बात मानी या नहीं मानी, तो भी प्यार का सागर बनकर रहा या कोई को डांट डपट भी दिखाई क्या? यज्ञ में रहकर जो बच्चे गफलत कर रहे हैं, नाफरमान बरदार बन रहे हैं, उनका क्या होगा, वर्णन नहीं कर सकते क्या होगा। ये संदेश जो है सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। जो लास्ट संदेश बताया, इसके बाद कोई संदेश नहीं देंगे। क्योंकि ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे,
कहाँ जाकर, छत पर, हाँ,
सूरज चांद सितारों के पार, ऊपर का मतलब है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो अव्वल नंबर उतारने वाला है वो अपनी आत्मा को कहाँ स्थिर कर देगा, है? सूरज चांद सितारों से पार ले जाएगा? शरीर तो यहीं रखना है ऑलराउंड पार्ट बजाना है या परमधाम जाएगा शरीर भी? तो वो तो शरीर से परमधाम जाने वाला नहीं है, शरीर से भी और आत्मा से भी इसी सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला है ना। तो ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था, अंदरूनी स्वभाव संस्कार से भी कितना प्यारा था, बाहर से भी कितना प्यारा था। क्या बाप के गुण देखने में आते थे? सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारा था वो तो ठीक है। सभी आत्माएं नंबरवार, आदि में सत्व प्रधान और अंत में तम प्रधान, ये जरूर है। कोई आत्मा द्वापर के आदि में ही इतनी तामसी बन जाती है, कमजोर बन जाती है कि ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा उसी को दबोच लेती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आएंगे तो देवता धर्म की कमजोर से कमजोर आत्मा को दबोचेंगे या पावरफुल को दबोचेंगे? क्यों? क्योंकि वो कमजोर आत्माओं ने श्रीमत को पूरा पकड़ा ही नहीं, न पकड़ने के कारण श्रेष्ठ कर्म इंद्रियों से बनती हैं या कर्म इंद्रियों को जल्दी से नीचे उतार देती है, है? जैसे बोला सतयुग हो चाहे त्रेता हो, कोई कोई को दो बार तीन बार भी बच्चे पैदा होंगे या सबको एक ही बार होंगे, है? दो बार तीन बार भी कोई कोई को होंगे। जो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं उनको दो तीन बार भी बच्चे होते हैं। और उनका यथा राजा तथा प्रजा भी वैसी ही होती है। तो वो आत्माएं जल्दी जल्दी नीचे उतरेंगी या धीरे धीरे नीचे उतरेंगी? तो जो आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, उन्होंने संगम युग में बाप की श्रीमत को फॉलो ही नहीं कर पाया कि जैसा संग वैसा रंग। एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को पहचान कर उसका संग करेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पावरफुल बनेंगे, और नहीं पहचानेंगे तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? तो इस्लाम धर्म की आत्माएं व्यभिचारी होने के कारण देह की भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार तो भले त्याग देती हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनका व्यभिचार नहीं त्याग पाती, और न त्याग करने के कारण उनकी शक्ति उस नेत्रों के व्यभिचार से ज्यादा क्षीण होती है या कम क्षीण होती है? ज्यादा क्षीण हो जाती है। उनमें भी जो उनका बीज है कोई होगा या नहीं? जो उनकी जड़ है, आधार मूर्त जो नारायण बनते हैं, वो जास्ती नीचे गिरते हैं और द्वापर युग शुरू होते ही इस्लाम धर्म की आत्माएं जिनमें नंबरवार प्रवेश करती हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, द्वापर के आज में ही कमजोर हो जाते हैं। तो कोई आत्माएं पहले कमजोर बनना शुरू कर देती, कोई आत्माएं जिन्होंने ज्यादा योग बल की शक्ति धारण करी है उन्होंने ही योग बल की शक्ति धारण करी होगी, जिन्होंने ज्ञान बल ज्यादा धारण किया होगा। जितना ज्ञानी उतना योगी। तो जो योगीश्वर कहा जाता है, योग में इतना माहिर हो जाता है एक के साथ, वो सृष्टि के अंत में जाकर नीचे गिरेगा कि द्वापर के आदि या कलयुग के आदि में नीचे गिरेगा? टोटली कब गिरेगा? अंतिम जन्म में जाकर नीचे गिरता है। तो बताया कि बाबा ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। बाबा के सामने अब सबका रजिस्टर खुलने वाला है। जो मुरली में बोला अंत समय में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है या नहीं होता है? हैं? जो बहुत प्यारी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखते हैं, अंदरूनी जेब में। तो सबसे जास्ती अंदरूनी जेब है बुद्धि रूपी पॉकेट। ऐसी ऐसी प्यारी भी चीज होती है कि जो प्यार का सागर कहा जाता है वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं। जो प्यार का सागर बाप बोलता है कि अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी तो फिर नंबर बार हो गए। तो नंबर बार हो गए तो उनका पोता मिलकर रजिस्टर गुप्त रहेगा या अभी खुलने वाला है? तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। अभी यज्ञ समाप्ति की ओर है। क्या यज्ञ माने? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान तो मनुष्य ही लेते हैं। मनुष्य है 400-500-700 करोड़ जो भी है, उनको जो भी ज्ञान लेना है, कोई को शुद्ध लेना है, कोई को मिक्सचर लेना है, कोई को एक से लेना है, कोई को अनेक गुरुओं से लेना है, लेना सबको है कि नहीं लेना है? सबको लेना है। तो अब वो ज्ञान यज्ञ समाप्ति की ओर है, जो पहले ही बता दिया, बाप के पास जो कुछ भी था सब कुछ अब बच्चों को दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा देने के लिए। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। क्या संपन्न बनाने वाला सबको कौन है? हैं? समय। समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ शक्तिशाली होता है जैसे प्रकृति, या चैतन्य शक्तिशाली होता है जैसे पुरुष? हैं? तो ये क्यों कहा? संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। समय बनाने वाला है संपन्न, ये अपने अपने पुरुषार्थ से संपन्न बनेंगे। तो ऐसा क्यों कहा? किसने कहा? कौन बोल रहा है? हैं? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। माने ब्रह्मा बाबा ने उस बाबा को पूरा पूरा जान लिया। जो काल जीते है, कालों का काल महाकाल है, जिसको कोई काल माने समय खा ही नहीं सकता, उसको पहचान लिया है? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा अभी भी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उनमें भी जो भारतीय धर्म की आत्माएं हैं, उन भारतीय धर्म की आत्माओं में जो सशक्त सबसे पावरफुल विधर्मी है कौन? इस्लामी। वो भारतीय है, है? बौद्धि। बौद्धि धर्म में ये मान्यता है, ये मान्यता महात्मा बुद्ध ने फैलाई। क्या? कि काल चक्र ही मुख्य है, भगवान अलग से कुछ नहीं होता। क्या है? ईश्वर कुछ भी नहीं होता, काल चक्र में सब बंधे हुए। तो क्या ऐसा है? शिव बाप ने हमको ऐसा सिखाया? ड्रामा माने काल चक्र, उसको मुख्य रखेंगे या आत्मा के पुरुषार्थ को आगे रखेंगे? मुख्य क्या है? आत्मा के अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, माने आत्मा के लिए जो किया जाए वो क्या हुआ? पुरुषार्थ। जो ये धर्म पिताएं हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये आत्मा के लिए नहीं कर पाते पूरा। जो भी करते हैं देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, इसलिए देह के कल्याण में ज्यादा बुद्धि रहती है। आत्मा का कल्याण कर ही नहीं पाते। और ये आत्माएं विदर्भी हो या विदेशी हो, ये सब ब्रह्मा की गोद में खेलने वाली हैं। कुखवंशावली है या मुखवंशावली है? कुख माने गोद की वंशावली है। उनको फकुर रहता है, हमने बाबा की गोद ली है, तुम कल के बच्चे हो, तुम क्या जानो ज्ञान क्या होता है। बहुत अहंकार। और उन बच्चों से अम्मा प्रभावित होगी या बाप प्रभावित होगा? जो मनुष्य सृष्टि की माँ कही जाती है वो प्रभावित होती है। दुनिया में भी देख लो, अभी जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, पहला पत्ता, कृष्ण बच्चा, माताएं उस बच्चे से प्रभावित हैं या नहीं है? प्रभावित हैं। कैसे? यहां तक प्रभावित हैं कि कृष्ण बच्चे को ही गीतापति भगवान माने बैठी हैं। नहीं है? अरे, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं जो अभी नीची आठ कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, जो ब्रह्मा की गोद को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते, वो आत्माएं किसको समझती हैं? गीता का भगवान, गीतापति भगवान किसको समझती हैं? कृष्ण बच्चे को समझे बैठी हैं। उनकी अम्मा कौन? जगदम्बा, जो सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, चाहे आधार मूर्त हो चाहे बीज रूप हो, आखिरी माया से हाथ मिलाकर इतना शक्तिशाली काम कर दिखाती है कि सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र को अपने कंट्रोल में ले लेती है। राज करेगा खालसा, सब माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया किसी को छोड़ती ही नहीं। कि अष्टदेव आत्माएं जो जगत पिता के सर पर श्रेष्ठ मणकों के रूप में रखे जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेगी है? अरे किसी को नहीं छोड़ती माने है, एक मायापति को छोड़कर, एक प्रकृतिपति को छोड़कर, एक लक्ष्मीपति को छोड़कर और किसी को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि महाकाली जो जगदम्बा तामसी रूप धारण करती है उसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, वो ज्ञान चंद्रमा अधूरा है या संपन्न? अधूरा है। जब तक अधूरा है तब तक चाहे मुस्लिम धर्म कहा जाए चाहे इस्लाम धर्म कहा जाए, कोई और धर्म वंशी भी हैं जिनमें अधूरे चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं या सूर्य को बहुत महत्व देते हैं, चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वो आत्माएं ज्ञान चंद्रमा की गोद में संगम में पली हैं, इसलिए उनमें ये संस्कार हैं कि कृष्ण बच्चे को ही सब कुछ मानती है, पूरा पूरा उसके नक्शे कदम पर चलती है। आज भी दुनिया में देखो, खास भारत में देखो, खुदान खास्ता बाप परिवार का यदि चला जाए तो माताएं किसके अधीन हो जाती हैं? बच्चों के अधीन हो जाती है। ये परंपरा कहां से चलती है? कब की बात है? है? कब की बात है? संपन्न रूप में कब की बात है? जब तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है और उसे खारिज किया जाता है, दो हजार सत्रह अठारह की बात है, जैसे आज में हुआ था, सारी दुनिया एक ओर और एक आत्मा दूसरी ओर हो गई थी, ऐसे ही ड्रामा चलता है। तो ये क्यों चलता है? क्योंकि सभी बच्चे किसके पक्ष में आ जाते हैं? प्यार देने वाले के पक्ष में आ जाते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस का कैसा प्यार होता है, दिखावटी या अंदरूनी? उन्होंने ये प्यार कहां से सीखा, किसकी गोद में बैठकर सीखा? हैं? कृष्ण वाली आत्मा की गोद में बैठकर सीखा, बाहरी प्यार। उस बाहरी प्यार से बच्चा बुद्धि जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। बाप को नहीं पहचान पाते, इसलिए बोला कि बच्चे यज्ञ में रह करके गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं। कह तो रहे हैं बाबा की बात, लेकिन बाबा को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं इस दुनिया में, या समय को सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं? समय को सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं। अम्मा किसके प्रभाव में आ गई? बौद्धि बच्चों के प्रभाव में आ गई। यु बुद्ध इस भारत देश में एक भगवान का अवतार बन करके बैठ गए। आज दुनिया में जो भी धर्म फैले हुए हैं उनमें एक ही धर्म है, जो भारत में भगवान के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। किस आधार पर? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। कैसी अहिंसा उन्होंने हिस्ट्री में दिखाई? विदेशियों ने आक्रमण किया और उन्होंने हाथ उठाए दिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से हिंसा होती है, हम अहिंसक रह कर जीवन में रहेंगे। उसे क्या हुआ? बीवी बाल बच्चे विदेशियों के अधीन हो गए। अधीन होने के बाद वो बच्चे दुखी हुए जन्म जन्मांतर या सुखी हुए? अब बताओ, जो अपनी रचना को ही सुरक्षा नहीं दे सकता, अहिंसा परमो धर्मा कह करके उसकी अहिंसा सच्ची है या निरर्थक है? निरर्थक है। इस बात की गहराई को ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज की आत्मा नहीं समझ सकती, क्योंकि बच्चा बुद्धि आत्मा है, इसीलिए प्रभावित होकर कह रही है सब अपने आप कौन संपन्न बना रहा है? है? समय संपन्न बना रहा है। फिर ये भी बोला, समय समाप्त हो चुका है। क्या संपन्न भी बना रहा है और समाप्त भी हो चुका है? दो बातें कैसे हो सकती? या तो संपन्न बनाए या तो खुद समाप्त हो जाए। ये मत सोचना अभी तो 20 साल पड़े हैं। किससे बोला? है? किससे बोला? किसने बोला? शिवभवन बोलो। ये वाणी गुलजार दादी के मुख से चली है। जैसे अन्य अव्यक्त वाणियां चलती थी वैसे ही चली है। तो ये मत सोचना 20 साल पड़े हैं। किससे बोला? ब्रह्मा की आत्मा ने गुलजार दादी के मुख से बोला। ये मत समझना 20 साल पड़े हैं। किससे बोला? है? बच्चों से बोला। कौन से बच्चों से बोला? बेसिक के बच्चों से बोला, एडवांस के बच्चों से नहीं बोला। एडवांस ज्ञान अभी उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। अगर नहीं बैठ रहा है तो इसी सीजन की अव्यक्तवाणी में क्यों बोला दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, बाप स्थापन कर रहे हैं।
बोला या नहीं बोला? तो दोनों के लिए बोला। यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के लिए ही बोला, दोनों के लिए बोला। दोनों समझते हैं कि अभी 20 साल पड़े हैं हमारे लिए, लेकिन राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी तो राजा की धारणा शक्ति, जो भी 108 राजाओं का संगठन तैयार होगा माला रूपी, उनकी धारणा शक्तियां संपन्न स्टेज में आ जाएंगी या नहीं, राजा और रानी बनने वालों की। और यथा राजा तथा प्रजा भी संपन्न हो जाएगी। तो वो सूर्यवंशी बच्चे बीज रूपी स्टेज में रहने वाले नंबरवार, या सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाली, इसी जीवन में कन्वर्ट होने वाली चंद्रमा के वंश की आत्माएं, दोनों के लिए बोला। ऐसे मत समझना 20 साल पड़े, 100 साल का युग है तो 20 साल पड़े हैं। बच्चे ऐसे समझे बैठे हैं या नहीं? 20 साल तो है ही नहीं। अच्छा, 20 साल तो है ही नहीं तो कितने साल हैं? 100 नहीं बता रहे। अरे जब बता दिया, मुरली में ही बोल दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगने हैं, तो जो भी विजयमाला के 108 युगल मण के हैं उनको कितना टाइम लगेगा पूरी राजधानी स्थापन करने में? है 50 साल माने 2028। और यथा राजा, राजाओं के तैयार होने की देरी है, प्रजा तो फट से राजा ही में आ जाती है। तो बीस साल जो समय बताया वो दुनिया वालों के लिए बताया, पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा में ज्यादा 100 साल, पुरुष माने आत्मा, और आत्माओं के बीच में उत्तम से उत्तम से उत्तम से उत्तम 500-700 करोड़ भी आत्मा से उत्तम से उत्तम से उत्तम लक्ष्मी नारायण नर से नारायण बनने वालों तक सभी उत्तम हैं या नहीं है? है? नंबरवार उत्तम है। तो पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा में ज्यादा कितना साल हुआ? 100 साल हुआ ना। लेकिन किन के लिए? तुम बच्चों के लिए या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के लिए? विदेशी और विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण संप्रदाय अभी हैं, उनकी बात है या तुम्हारे लिए है? हैं? तुम बच्चे कहा जाता है जो सन्मुख बाप के बैठने वाले, ये बच्चा या इनके फॉलोअर बच्चे कौन हुए? ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले 8 धर्म की कमजोर कुरी की आत्माएं, वो सब हो गई ये जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, मां के प्रभावित होने के साथ ही साथ बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चा बुद्धि है, मां को फॉलो करेंगे। तो दो तरह के बच्चे हो गए, तुम बच्चे ये बच्चा और इनके फॉलोअर बच्चे और वो बच्चे और उनके फॉलोअर बच्चे कौन हुए? कौन हुए? विधर्मी और विदेशी बच्चे जो डायरेक्ट परमधाम से आते हैं वो बहुत दूर वाले हो गए, ये तो फिर भी बाजू वाले हैं और तुम तो बिल्कुल नजदीक हो। बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं, ये तो बीच में सुन लेता है कौन, और उनके फॉलोअर वो भी। तो बताया ऐसे मत समझो कि अभी 20 साल तुम्हारे लिए 20 साल तो है ही नहीं। अब बाबा को बता देना चाहिए ना 20 साल नहीं है तो कितने साल हैं? अभी उतनी बात बुद्धि में बैठना बाकी है। क्यों क्यों? जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होगी तब तक अम्मा अपने बच्चों का पक्ष लेती ही रहेगी। अम्मा जो दाढ़ी मूंछ वाली अम्मा थी जिसका गायन शास्त्रों में नहीं है, मंदिर नहीं है, यादगार मूर्तियां नहीं है, याद नहीं होती है, वो अम्मा दाढ़ी मूंछ वाली जिसकी पूजा नहीं होती है, वो जब क्लीन शेप वाली माता में प्रवेश करती है तब उसकी पूजा होती है। तो वो पार्ट अभी बाकी है या नहीं बाकी है, है? अरे वो पार्ट चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो जो पार्ट अभी चलना बाकी है इसलिए बोला कि 20 साल तो है ही नहीं तुम बच्चों के लिए। तो बच्चे तो जानते हैं, पहले ही बुझिया बाबा तो जानते हैं ना, आप भी जानते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। कितने साल हैं? अरे आपके लिए पुरुषार्थ के लिए कितने साल हैं? 10 साल। 20 साल तो है नहीं, सब कुछ अचानक अचानक होने वाला है। क्या? और एक और बात बाबा याद दिलाना चाहते हैं। क्या है? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए है? ये माने क्या? ये शरीर माने क्या? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। किसको कहा बाबा हैं? बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए दुनिया में। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में आज जो हुजूम के ब्राह्मण हैं, पांडवी ब्राह्मण तो थोड़े होते हैं, हुजूम के ब्राह्मण हैं जो 8 नीची कुरियों वाले हैं, वो भी दुनिया है ना ब्राह्मणों की। जैसे भक्ति मार्ग में देखा गया, क्या देखा गया? कि दुनिया समझती थी कि दुनिया में एक बड़ा भारी आतंकवादी आया हुआ। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी भारी हुजूम यही समझे बैठा है। कर बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों में क्या कौन आया हुआ है? ओ सामा बिल लादेन, क्या? सामा माने शाम आ गई, दुनिया की नजरों में सूरज छुपने वाला है। ओ शामा बिन ला देन, जो कुछ तुम्हारे पास तन मन धन है वो सब दे दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करता था वो? उसकी आवाज दुनिया में जा रही थी या दुनिया के सामने खुद जा रहा था? ऐसे ही बताया, ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसके सामने नहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए हैं? दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ब्रह्मा की गोद के सूर्यवंशी न बनने वाले बच्चे हैं, सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले बच्चे नहीं हैं, और धर्मों में भले कन्वर्ट हो जाएं, गांठ बांधे बैठे हैं, उन बच्चों में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए या तुम बच्चों के बीच प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाबा की आवाज जाना चाहिए। जनक बच्ची को ये संदेश पहुंचाना है ताकि वो बच्ची सबकी क्लास करा सके। क्या सबकी माने? अरे बात हो रही थी आवाज पहुंचाने की, आवाज कहां से निकलती है? हैं? मुख से निकलती है, रावण से निकलती है, विदेशों से नहीं निकलती हैं? विदेशों से आवाज बाप की प्रत्यक्षता की नहीं निकलेगी? निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। जैसे एडवांस के आदमी भी हुआ, 20 रूप आत्माओं की दुनिया जब से आरंभ हुई तो विदेशी बीजों ने पहले पहचाना, सहयोग दिया, या स्वदेशियों ने सहयोग दिया? विदेशियों ने सहयोग दिया। इस्लाम धर्म का बीज हो, क्रिश्चियन धर्म का बीज हो, बुद्ध धर्म का बीज हो, वो ही सहयोगी बने। तो किसके पास आवाज पहुंचाना? जो वहां की हेड मानी जाती है। कौन है? जनक दादी। संदेश पहुंचाना ताकि वो सबकी क्लास करा सके है? कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, सबकी क्लास करा सके, क्योंकि वो सब किसी भी धर्म में जाने वाली होंगी आत्माएं। तो मातृदेश की माताएं होंगी या विदेश के बाप होंगे? है भारत जो मातृदेश है वहां की माताएं हैं, जो कृष्ण जैसे बच्चों को प्रधानता देती है। बाप के महत्व को नहीं जान पाते, तो वो बच्ची सबका क्लास कराए। कौन सा क्लास? जो संदेश अभी दिया जा रहा है, सभी बच्चों को समय का इशारा दे सके, क्योंकि बच्ची को भी अभी बाबा के पास आना है ना। क्या कहा? बाबा के पास आना है ना। कौन से बाबा के पास आना है? हैं? जो जनक दादी हैं, उनको कौन सी आत्मा के ऊपर, कौन सी साकार आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिस पर पक्का विश्वास बैठा हुआ है? तो ब्रह्मा बाबा के पास आना है ना। तो बाबा के पास आते आते वो समय जो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए। क्या बिना इशारा दिए नहीं आए? कौन सा समय है? कौन सा समय का इशारा?
अरे
चाहे वो 10 साल पढ़े हैं, चाहे वो 20 साल पढ़े हैं, वो पहले खुद समझे 10 साल किसके लिए और 20 साल किसके लिए। वो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए, क्योंकि अभी अभी माने कभी है, जब ये वाणी चल रही है, अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है बहुत नाजुक है। कौन सी बच्ची? गुलजार दादी। बाबा उस शरीर का अब यूज नहीं कर सकते, इतना नाजुक शरीर हो गया है, इसलिए ये जो बाबा बोल रहे हैं वो सभी तरफ जाना चाहिए। सभी तरफ माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं के कोनों में भी। आठ दिशाएं उगाई हुई है अर्थ दिगोपाल, चारों ओर जाना चाहिए। इसमें अगर संशय आया तो फेल हुआ। ये नहीं सोचना कि अभी बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया। कौन सी बच्ची है? गुलजार दादी का। अब किसका तन लिया? ब्रह्मा का भी तन छूट गया, दूसरी बच्ची का भी तन लुन्युम पुन्युम बहुत कमजोर हो गया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया। क्या? कौन से बाबा ने तन लेना है सो लिया? ब्रह्मा बाबा ने लिया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है। कौन सा तन गुप्त रूप में है? है ब्रह्मा बाबा का तो गया, वो तो गुप्त हो ही गया, अव्यक्त हो गया। गुप्त होने न होने का सवाल ही नहीं। अरे गुलजार दादी,
तो वो सबके सामने प्रत्यक्ष है या छुपा के रखा गया है। तो जिसका तन लेना है उसका तन लिया किसने? बाबा ने। बाबा को पता ही नहीं है अभी बाबा किसको कहा जाए और बाप किसको कहा जाए। यहाँ बाबा किसको कह रहे हैं? हैं? निराकार शिव को कहा बाबा। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया है, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है, किसी के सामने नहीं आना चाहिए। हैं? किसी के सामने नहीं आना चाहिए। किसी माने किसी माने किसके सामने नहीं आना चाहिए? हैं? बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। हैं? अरे बच्चों के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जो बच्चे हैं वो सब सूर्य वंश के हैं बीज, या दूसरे धर्म वंशों के भी बीज बैठे हैं? हैं? है या नहीं? तो पता चलेगा, चलता है कि कौन सूर्यवंशी है या कौन सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले हैं, और कौन कौन बच्चे हैं इन बीज रूप आत्माओं में जो सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। उन्होंने गांठ बांध रखी है ग्लानी करने की। तो किसी के सामने ये रखा नहीं आना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, चाहे वो दुनियावी रूप में विदेशी या विधर्मी हो, परमधाम से डायरेक्ट उतरी हुई आत्माएं द्वापर युग से, चाहे वो उन विदेशी विधर्मी संगठनों में कन्वर्ट होने वाली ये भारत की आधारभूत आत्माएं हो, चाहे बीज रूप आत्माएं हो, दूसरे धर्मों के बीज, उन तक ये आवाज जानी चाहिए। लेकिन शरीर उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए।
अच्छा,
हो जाएगा तो क्या होगा? है? अगर ये प्रत्यक्ष हो जाएगा सामने ये तन, तो क्या होगा? अरे कुछ हो जाएगा क्या? अरे हिस्ट्री में जितने भी धर्म पिताएं आए उनका क्या हुआ? क्राइस्ट का क्या हुआ? मोहम्मद का क्या हुआ? जो भी धर्म पिताएं आए सबको इस दुनिया में आकर के उस समय की दुनिया वालों के बीच मात खानी पड़ी या विजयी होके गए? मात खानी पड़ी। बाद में उनके फॉलोअर्स ने कितना भी बितंडाबाद कर दिया हो, तो बस आवाज ही जानी चाहिए। समझ में आया ना? हाँ, वहां तक क्या, जहां तक आवाज जा सकता है। क्या कहा? वहां तक क्या माने जो परमधाम से उतरने वाली आत्माएं हैं, वहां तक क्या जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं हैं, आधार मूर्त या बीज रूप आत्माएं तुम बच्चों के बीच में भी बैठी हुई हैं, सबके पास आवाज जानी चाहिए। जहां तक आवाज आप पहुंचा सकते हैं, वहां तक बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। कौन से बाप की? निराकार आत्माओं के बाप की आवाज, चंद्रवंशियों के बाप की आवाज, अन्यान्य विदेशी और विधर्मी धर्म पिताओं की आवाज, या सूर्यवंशी जो पक्के बनने वाले हैं, जो कभी भी किसी भी जीवन में जीवन रहते दूसरे धर्मों की डालियों में, जैसे मनुष्य सृष्टि वृक्ष की दाई ओर की भारतीय डालियां विधर्मी, या बाई ओर की विदेशी डालियां, उनमें कन्वर्ट होने वाले नहीं है। जहां तक आवाज पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, पहुंचेगी ऊंचा। अरे तुम्हारी आवाज जो मुठ भर हो, पांच पांडव ही तो हैं, है या नहीं? पांच पांडव हैं, पांच पांडव जीते जी शरीर रहते रहते स्वर्ग में जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, हैं? नहीं जाते हैं? कौन जाते हैं? हैं? जो असल सूर्यवंशी हैं, युद्ध स्थिर, चाहे संगम हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, झूठ से निरंतर युद्ध करते हैं, एक सत्य बाप के साथ ही बनकर रहते हैं। उनसे कहा, पूछा, आवाज पहुंचेगी? इतना निश्चय है कि हम आवाज पहुंचाएंगे? पहुंचेगी ना?
अरे
ब्रह्मा बाबा को संशय आ रहा है, संशय आ रहा है, संशय आ रहा है, तब बार बार पूछ रहे हैं, या पक्का निश्चय हो गया कि पहुंचाएंगे? है? हाँ, क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है ना। क्या कहा? लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान। खुद का ज्ञान चल गया है
खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं।
किसी को 20 साल हुए, इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या जो समझते हैं हम बाप से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए?
ज्ञान के आधार पर हम बाप से भी टक्कर ले सकते हैं।
उनका परिचय भी दे रहे हैं, किसी को 20 साल हुए, किसी को 30 साल हुए, किसी को 40 साल हुए,
एडवांस ज्ञान में आए हुए, वो समझते हैं कि हम बाप के भी बाप बन गए।
कौन है वो बच्चे? है
40 साल से एडवांस में कौन आया और बाप का भी बाप बन के बैठ गया और अपने को बाप समझकर बाप की धुलाई पिटाई भी कर दिया?
अरे बाप को तो हक है ना, है? बच्चे को सुधारने का हक है या नहीं है? है
बाप अपने को बाप समझेगा तब हक है या बिना बाप समझे से हक है?
हाँ,
समझते हैं कि बाप के भी बाप बन गए और बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए।
क्या कहा?
प्रैक्टिकल में बाप बन गए। कोई को 30 साल हो गए, बाप के बाप बनकर बैठ गए और विरोधी एक्ट करने लगे। 30 साल हो गए, कोई को 20 साल हुए,
17-18 में से 20 साल घटाया तो कितना आया?
नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट। तो उसने तब से विरोध करना शुरू कर दिया सक्रिय। प्रैक्टिकल में किया भी होगा। प्रूफ भी मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है।
क्या
नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है?
यू मुरली में बार बार बोलता है ब्रह्म वाक्य,
बच्चे तुम्हारा बाप आया।
बोलता है बार बार कि नहीं? बोलता है।
जो आप बने हो वो उसी बाप की वजह से बने हो। बाप ने ऐसा ज्ञान दिया तब तुम्हारी बुद्धि में बैठा कि तुम किस धर्म के बीज हो बाप।
क्या
है? बाप ने ज्ञान दिया तब तुम्हारी बुद्धि में बैठा कि तुम किस धर्म के बीज रूप बाप हो। जो सक्रिय विरोधी बन जाते हैं, पूरा ही अधीन कर लेते हैं, जबरदस्त भारत की धुनाई पिटाई करते हैं,
कौन से धर्म वाले
है? है? एक का नाम बताओ।
अच्छा,
उन्होंने तो कितने लंबे समय तक राज्य किया भारत में, मिलकर के राज्य किया बहुत कुछ। किसने? मुसलमानों ने। वो कौन है जिन्होंने थोड़े समय राज्य किया और जबरदस्त धुनाई पिटाई मराई कर दी? है हाँ। ये सारी बातें बच्ची को जहां मैन मैन जाना चाहते हैं। क्या कहा? ये जो अभी तक सारी बातें बोली वो सारी बातें मैन मैन जहां जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहते हैं? अरे कौन जाना चाहते हैं? बच्ची को तो बाबा के पास जाना है। गुलजार दादी लुंजम पुंजम हो गई, अब किसको जाना है? मैन मैन शहरों तक, मोहन मैन देशों तक किसको जाना है? मैन मैन जहां जाना चाहते हैं, जो भी हैं, जिस सेंटर पर भी हैं, और जो अभी अभियान निकला है। क्या बता रहे हैं आगे? क्या अभियान निकला है? जो अभी अभियान निकला है, जो पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है, जिस अभियान का पता है कौन सा अभियान? उस अभियान का पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है, जो अभियान सभी युवाएं मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। युवाओं को क्या खास बात हो गई है? युवाओं में ज्यादा गिनती किसकी होती है? अधर कुमारों की, कुमारियों की, अधर कुमारियों की या कुमारों की? जो सभी युवाएं मिलकर के, एक दो नहीं, क्या सभी युवाएं मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। कौन प्रत्यक्ष करने वाले हैं? युवाएं। जो बाप की प्रत्यक्षता कोई भी नहीं कर सका, वो काम कौन करने वाले हैं? युवाएं प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ये एक लास्ट संदेश है। क्या? ये अभियान एक लास्ट संदेश है, होगा, इसके बाद कोई संदेश नहीं होगा। यही अभियान जो भी है, जिसकी भी बुद्धि में ये प्लान आया है, क्या अभियान का प्लान जिसकी भी बुद्धि में आया है और जिसने भी बनाया है, वो अभियान का प्लान बाप की प्रत्यक्षता का उसने नहीं बनाया है। उसने माने तुम में से किसी ने नहीं, इसने नहीं, इसके फॉलोअर्स ने नहीं, उसने बनाया है। नहीं समझा? उसने माने किसने है? अरे अर्ध विनाश में भी बनाया था, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में विनाश हुआ था, अर्ध विनाश।
उस समय भी उसी ने बनाया था। बाबा ने तो सिर्फ इशारा दिया, क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो जिसकी बुद्धि में भी ये प्लान आया है और जिसने भी ये प्लान बनाया है, कौन सा प्लान है? बाप की प्रत्यक्षता का अभियान। ये कैसे होती है? अरे बाप की प्रत्यक्षता कैसे होती है पता ही नहीं। अरे वो प्रत्यक्षता के लिए बाप के नाम के साथ भक्ति मार्ग में बम बम लगाया जाता है, हर हर बम बम। कौन सा प्रत्यक्षता का प्लान है? जोर से बोलो, परमात्म प्रत्यक्षता बम। युवाओं ने ही क्यों बनाया? युवाएं ही मिल करके क्यों बनाएंगे? हा? अरे कुमारियां क्यों नहीं? अगर कुमारियां क्यों नहीं? हा? कुमार जो चाहे जो कर सकते हैं, चाहे तो दुनिया का ध्वंस कर सकते हैं और चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं। माने कुमारों में से ही कोई कुमार निकलता है जो नई दुनिया को बनाने का निमित्त बनता है, और कुमार ही मिलकर के ऐसा संगठन बनाते हैं जिससे सारी दुनिया का विनाश। कौन सी दुनिया? अरे है? हाँ, जो प्लान तो पहले से ही बना हुआ था, शास्त्र में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि का 3 बार विनाश हुआ, ये आखिरी बार है। तो ऐसा कौन सा अभियान है जो सारी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश हो जाएगा? अरे नहीं समझ में आया, बाप की प्रत्यक्षता का क्या प्लान, क्या अभियान है? आवाज सुनाई देगी? आवाज तो कितना लंबे समय हो गया, आवाज ही आवाज चली आ रही है। हैं? अरे दुनिया वालों को कहाँ शरीर दिखाई दे रहा है? वो तो सन 2000-2001 के आसपास भी बोला था। दुनिया वाले समझते हैं बाप गुप्त हो गए, और बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे सदा प्रत्यक्ष हूँ, बच्चों के आगे, चच्चों के आगे नहीं। तो कौन सा प्लान है, कौन सा अभियान है जो मिलकर वो अभियान चलने वाला है? नहीं आता है बुद्धि में है? नई दुनिया का, नई दुनिया की स्थापना कुमार करेंगे जिनको 24 घंटे आग लगी रहती है, जो बड़े बड़े फिलासफर दुनिया के बताते हैं। कि कुमारों के अंदर एक संकल्प और युगल जो अधर कुमार हैं उनके 1000 संकल्प, उन 1000 संकल्पों को एक तुला पर रखो और कुमारों का एक संकल्प एक तुला पर रखो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन सा संकल्प है? वो कौन सी आग है?
जो कुमारों में सबसे जास्ती लगी रहती है,
है? है?
अच्छा कुमार तो कभी रहे ही नहीं कोई, कैसे बताएं? तो उसका नाम दिया है बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। ये निर्माण का काम करेगा, नई दुनिया निर्माण करेगा या पुरानी दुनिया को ध्वस्त करेगा पहले? है जो पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया हो गई, संक्षेत्र से शुरू हुई है एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया, जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया पहले 36-37 से शुरू हुई, 76 तक 40 वर्ष हुए, ऐसे ही एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया 76 से शुरू हुई और 2017 तक 40 वर्ष हुए। ये ध्वस्त होने वाली है, ये अभियान युवाएं मिलकर करेंगे।
क्या है?
बुद्धि में नहीं बैठता है? यही अभियान जो भी है, जिसकी भी बुद्धि में ये प्लान आया है, जिसने भी बनाया है, वो उसने नहीं बनाया है।
क्या कहा?
उसने नहीं बनाया है, बाप ने कैच कराया है।
क्या?
वो प्लान उसको बाप ने कैच कराया है कि तुम्हारा मुख्य पार्ट क्या है, तुम किस धर्म के बीज हो, पहले ही फाउंडेशन डाल दिया था आदि में ही। किस धर्म के बीज हो? कौन सा धर्म है जो दुनिया का विनाश करा देता है? क्रिश्चियन, उनमें भी वो क्रिश्चियन जो नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते, धर्म पिता को नहीं मानते, गिरजाघर को नहीं मानते, धर्म पुस्तक को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, अपने सामने बाप को ही नहीं मानते। तो उनको ये प्लान बाप ने कैच कराया है कि तुम्हारा ये मुख्य कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य है? परमात्मा प्रत्यक्षता का बड़े से बड़ा बॉम्ब फोड़ना। उसे क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले सारी दुनिया ध्वस्त होगी, बाद में बाप भी प्रत्यक्ष होगा।
क्या?
वो प्लान ग्लानी का प्लान है, बम जो हैं वो बेहद में जो बनते हैं वो ग्लानी के बम होते हैं या महिमा के बम होते हैं? ग्लानी के बम हैं, जो बम साधारण बच्चे नहीं फोड़ सके, जो ब्रह्मा के साधारण बच्चे कहे जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ग्लानी तो करते हैं, करते रहे, लेकिन वो अभियान सफल नहीं हुआ। और ये युवा कुमार, ये अभियान प्रैक्टिकल में संपन्न करके दिखाने वाले हैं, जिसमें सारी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो जाएगा। और नाम है उसका बाप का प्रत्यक्षता बम। बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा
या नष्ट हो जाएगा?
बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा।
अच्छा, क्योंकि बच्ची की तन में आकर तो बाबा इतना नहीं बोल सकता है। क्या इतना माने? जितना जो नया तन है, क्या तीसरा तन, ये जितना नंगा नाच कर सकता है, इतना नंगा नाच बच्ची कैसे करेगी? है? बच्ची तो नहीं कर सकती। बच्ची के तन में आकर तो बाबा इतना नहीं बोल सकता। सभा में भी इतना नहीं बोल सकता। और हलचल भी नहीं, अचल रहना है। भले बड़े से बड़ा बम फूटे, बाप की बड़े से बड़ी ग्लानी का बम फूट पड़े, जहर भरा हुआ हो जिसमें, अचल रहना है। क्योंकि क्यों अचल रहना है? क्योंकि अब कहां जाना है? 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 कहां जाना है? याद ही नहीं आ रहा है? घर जाना है, सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार जाना है। नहीं, कहां जाना है? है? जो मुरली में 20 बार बोला, घर को याद करो, बाप को याद करो, सर को याद करो। अरे तीन को याद करें या एक को याद करें? अरे जो बाप है वो ही हमारा घर है। ज्योतिर्लिंगम शिव, मन मना भव जिसके लिए बोला जाता है, मेरे मन में समा जा, वो कहता है, है? उसको मन है तो कौन कहता है मन मना भव? साकार सो निराकार कहता है, एक ही व्यक्तित्व है। जो आज भी मंदिरों में पूजा जाता है, सबसे जास्ती तादाद में जिसकी मूर्तियां खुदाइयों में मिली हैं, सार्वभौम है, वो कहता है मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरा मन जड़ है या चैतन्य है? जड़त बुद्धि वाला है या चैतन्य बुद्धि है? मन ब्रह्मा है ना, है? हाँ, जड़त बुद्धि भले है लेकिन तुरिया है। क्या समा जा, अब घर जाना है। माता ही तुम्हारा घर है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, परिवार में, वो कौन से घर से आते हैं? कौन सा घर है उनका? कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई भी प्राणी शरीर छोड़ता है, तो कहां कौन से घर में जाता है? माता के घर में जाता है। ओम शांति। पैर? ओहो, तेरा पैर इसलिए दुखता है कि तू बाबा की याद में दौड़ती नहीं है बुद्ध रूपी पांव से। क्या दौड़ लगा दे, दर्द बंद हो जाएगा। Thank you.